एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनकी सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी और वैश्विक राजनीति पर आप कह सकते हैं गहरी छाप छोड़ी है।
जी हाँ,
बिल क्लिंटन, और उनकी आत्मकथा है माई लाइफ। ये काफी मोटी किताब है ना, 1000 पन्नों से भी ज्यादा शायद।
हाँ, काफी वजनी किताब है और इसमें उन्होंने अपने जीवन को बहुत विस्तार से रखा है।
तो ये हैं कौन, मतलब जो शायद उन्हें उतना ना जानते हो?
बिल्कुल, बिल क्लिंटन वो 1993 से 2001 तक अमेरिका के 42nd राष्ट्रपति रहे और उनकी कहानी सच में असाधारण है। सोचिए, अरकैंसस के एक छोटे से शहर होप में 1946 में जन्म हुआ।
हाँ,
जन्म से पहले ही पिता गुजर गए, फिर बचपन में सौतेले पिता के शराब पीने और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। मतलब शुरुआत काफी मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी गए, फिर ऑक्सफर्ड में प्रतिष्ठित रोड स्कॉलर बने और उसके बाद येल लॉ स्कूल पहुंचे, और वहीं उनकी मुलाकात हिलेरी रोडम से हुई।
ये जो आपने बताया ना, एक तरफ वो ग्रामीण दक्षिणी परवरिश और दूसरी तरफ इतनी आला तालीम, ये विरोधाभास ही शायद उन्हें खास बनाता है।
सही कहा,
शायद इसी वजह से वो अमेरिकी समाज के इतने बड़े तबके से जुड़ पाए।
सुना है वो किस्से सुनाने में भी माहिर थे।
हाँ, कमाल के कहानीकार माने जाते हैं, और ये किताब माई लाइफ शायद उनकी सबसे निजी और सबसे बड़ी कहानी है।
तो किताब का मुख्य विचार क्या है, मतलब वो क्या बताना चाहते हैं इसके जरिए?
किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि कैसे किसी का निजी इतिहास, उसकी परवरिश, उसके अनुभव और उसकी सार्वजनिक किस्मत, मतलब उसका करियर, उसकी नियति, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं।
अच्छा, क्लिंटन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनके बचपन की जो मुश्किलें थी, उनके जो मूल्य थे, यहाँ तक कि उनकी जो कमजोरियां रहीं, वो सब कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक सोच, उनकी महत्वाकांक्षाओं और राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए फैसलों की वजह बनी।
तो ये एक तरह से अपनी कहानी खुद बयान करने की कोशिश है।
बिल्कुल, उनका मकसद शायद यही था कि वो अपनी कहानी खुद कहें, अपनी कामयाबियों और नाकामियों दोनों को उस बड़े नज़रिए से पेश करें जहां वो हमेशा सबके लिए मौके बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये कोशिश, जैसा वो कहते हैं, उनके अपने अनुभव से जन्मे थी जो अमेरिका के वादे ने उन्हें दिया था।
ये दिलचस्प है, तो चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं, वो शुरुआती साल कैसे थे?
हाँ, उनका बचपन अरकान्सस के होप और फिर हॉट स्प्रिंग्स जैसे शहरों में बीता। पिता तो जन्म से पहले ही नहीं रहे थे। उनकी माँ वर्जीनिया केली काफी जीवंत और आशावादी बताई जाती हैं, लचीली थी। लेकिन सौतेले पिता रॉजर क्लिंटन, उनके साथ अनुभव अच्छे नहीं थे। शराब और दुर्व्यवहार का माहौल था घर में। क्लिंटन खुद किताब में दो बिल्स होने की बात करते हैं।
दो बिल्स, इसका क्या मतलब है?
मतलब एक बाहरी बिल जो कामयाब था, लोगों से मिलता था, उम्मीदों से भरा था, और एक अंदरूनी बिल जो अपने सौतेले पिता की उस अंधेरी विरासत, जैसा वो कहते हैं, उससे जूझ रहा था।
ये मानना कि एक ही इंसान के अंदर ये दो पहलू हो सकते हैं, ये काफी अहम लगता है। नेताओं में ही नहीं, शायद हम सब में होता है ये।
बिल्कुल, उनकी दादी एडिथ कैसिडी जैसी मजबूत महिलाओं का भी उनकी जिंदगी पर गहरा असर रहा। उन्होंने उन्हें सहनशीलता सिखाई, शिक्षा की कीमत समझाई, और उनके दादाजी का एक किराना स्टोर था।
हाँ, मैंने पढ़ा था,
जो उस दौर के नस्लीय भेदभाव वाले माहौल में भी सबके लिए खुला था।
ये छोटी छोटी बातें बड़ी छाप छोड़ जाती हैं।
सही बात है, और ये शुरुआती अनुभव, खासकर नस्लीय भेदभाव को देखना, क्या इसने उनकी बाद की सोच को प्रभावित किया? हाँ बिल्कुल, नस्लीय रूप से बटे हुए दक्षिण में बड़े होने के अनुभवों ने नागरिक अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया, ऐसा वो मानते हैं। और फिर आया 1963 का वो पल,
जीएफके से मुलाकात वाला।
हाँ, बॉयज नेशन के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से हाथ मिलाया। क्लिंटन मानते हैं कि बस उसी एक पल ने उनके मन में सार्वजनिक सेवा में जाने का इरादा पक्का कर दिया था।
कमाल है, एक मुलाकात और जिंदगी की दिशा तय हो गई।
इसके बाद फिर उनकी पढ़ाई का दौर शुरू हुआ, जॉर्जटाउन, ऑक्सफर्ड, येल।
जी,
जॉर्जटाउन में उन्होंने सेनेटर फुलब्राइट के दफ्तर में काम किया, ऑक्सफर्ड में रोड स्कॉलर रहे, वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी कुछ सक्रियता दिखाई, और उनका नजरिया थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हुआ। फिर येल लॉ स्कूल, जहां हिलेरी रोडम से मुलाकात हुई और उनकी कानूनी और राजनीतिक सोच और मजबूत हुई।
और फिर वो आर्कनसास वापस आ गए।
हाँ, आर्कनसास लौटकर उन्होंने हिलरी से शादी की, जिन्हें वो हमेशा अपना सबसे अहम बौद्धिक और राजनीतिक साथी मानते रहे हैं। शुरुआती राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव दोनों देखें।
अच्छा,
1974 में कांग्रेस का चुनाव हार गए, लेकिन फिर आर्कनसास के अटॉर्नी जनरल चुने गए, और फिर महज 32 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे युवा गवर्नरों में से एक बन गए।
लेकिन सफर आसान नहीं था। 1980 में वो गवर्नर का चुनाव हार भी गए थे ना, ये तो बड़ा झटका रहा होगा।
बहुत बड़ा झटका था। किताब में वो इसे एक सबक सिखाने वाला अनुभव बताते हैं। कहते हैं हार ने उन्हें विनम्र बनाया और ये सिखाया कि मतदाताओं की सुनना, उनसे जुड़े रहना कितना जरूरी है।
और फिर उन्होंने वापसी की। 1982 में वो दोबारा गवर्नर बने और यहीं से उनकी वो कमबैक किड वाली छवि मजबूत हुई, मतलब जो हार के बाद वापसी करना जानता हो।
और इसी दौरान वो न्यू डेमोक्रेट वाली सोच भी पनप रही थी।
ये न्यू डेमोक्रेट या तीसरा रास्ता, ये क्या था असल में?
हाँ, गवर्नर रहते हुए और खास तौर पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप काउंसिल DLC के प्रमुख के तौर पर उन्होंने ये तीसरा रास्ता या न्यू डेमोक्रेट दर्शन गढ़ा। ये असल में राजनीति का एक मध्यमार्गी, ज्यादा व्यवहारिक तरीका था।
मतलब
इसका मानना था कि पुरानी कट्टर वामपंथी या दक्षिणपंथी सोच अब उतनी कारगर नहीं है। सरकार को वित्तीय अनुशासन भी रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामाजिक निवेश भी करना चाहिए। सरकार बड़ी या छोटी न हो, बल्कि स्मार्ट और असरदार हो।
एक संतुलन बनाने की कोशिश, और इसी सोच ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई।
जी, खासकर 1988 के डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में दिए गए भाषण के बाद उनकी राष्ट्रीय प्रोफाइल काफी बढ़ी। फिर आया 1992 का राष्ट्रपति चुनाव। उनका नारा बहुत मशहूर हुआ था,
इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड।
हाँ, याद है।
बिल्कुल,
यानी मुद्दा अर्थव्यवस्था है। लेकिन उस चुनाव में उन पर कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगे थे। जेनिफर फ्लावर्स के आरोप, वियतनाम युद्ध ड्राफ्ट को लेकर सवाल।
हाँ, उन्हें इन सबसे निपटना पड़ा।
उन्होंने अल गोर को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना और खुद को एक नए तरह के डेमोक्रेट के तौर पर पेश किया, जो आर्थिक विकास का समर्थक हों, अपराध पर सख्त हों और कल्याणकारी योजनाओं में सुधार के लिए तैयार हो, और वो चुनाव जीत गए।
तो अब आते हैं उनके राष्ट्रपति कार्यकाल पर। पहले कार्यकाल 1993 से 1997 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप?
आर्थिक मोर्चे पर 1993 का बजट काफी अहम माना जाता है। इसमें अमीरों पर टैक्स बढ़ाया गया, सरकारी खर्चों में कटौती हुई और सरकारी घाटे को कम करने पर जोर दिया गया। कई लोग मानते हैं कि इसी ने 90 के दशक के अंत में जो आर्थिक तेजी आई, उसकी नींव रखी थी।
इसके अलावा कुछ और बड़े कानून भी पास हुए थे उस दौरान।
जी हाँ, जैसे NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको के बीच मुक्त व्यापार का समझौता था। फिर ब्रैडी हैंडगन हिंसा रोकथाम अधिनियम, जिससे बंदूक खरीदने पर कुछ नियंत्रण लगा।
अच्छा।
अमेरिका कोर नाम का राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ और परिवार और चिकित्सा अवकाश अधिनियम, फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट भी पास हुआ। इससे लोगों को पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी लेने में थोड़ी आसानी हुई।
लेकिन उनकी एक बड़ी योजना थी स्वास्थ्य सेवा सुधार की, वो कामयाब नहीं हो पाई थी।
हाँ, वो हिलेरी क्लिंटन के नेतृत्व में तैयार हुई थी, काफी महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन सफल नहीं हुए।
क्या वजह रही उसकी?
किताब में क्लिंटन कई वजहें बताते हैं, विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का जबरदस्त विरोध, स्वास्थ्य बीमा उद्योग की लॉबिंग और शायद खुद योजना का जरूरत से ज्यादा जटिल होना, ये उनके लिए एक बड़ा झटका था।
और फिर 1994 में उनकी पार्टी कांग्रेस में बहुमत खो बैठी।
हाँ, जिसे रिपब्लिकन क्रांति कहा गया। क्लिंटन इसे एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक मानते हैं। कहते हैं इसने उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर किया।
और फिर 1996 में वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे कार्यकाल 1997 से 2001 में क्या कुछ खास रहा?
दूसरे कार्यकाल में भी कुछ अहम काम हुए, जैसे 1997 में रिपब्लिकन के साथ मिलकर संतुलित बजट अधिनियम पास हुआ। कल्याणकारी व्यवस्था में बड़ा सुधार किया गया, जो काफी विवादास्पद भी रहा।
विदेश नीति में भी काफी सक्रिय रहे वो।
हाँ, बहुत। बोस्निया युद्ध को खत्म करवाने में डेटन समझौते की अहम भूमिका रही। उत्तरी आयरलैंड में ऐतिहासिक गुड फ्राइडे समझौता हुआ। इसराइल फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, हालांकि कैंप डेविड वार्ता अंत में असफल रही और कोसोवो में नस्ली हिंसा रोकने के लिए नेटो का हस्तक्षेप भी इसी दौरान हुआ।
और आर्थिक तौर पर यह दौर कैसा था अमेरिका के लिए?
ये अमेरिकी इतिहास में आर्थिक विस्तार का सबसे लंबा दौर माना जाता है। करीब 2,20,00,000 नई नौकरियां पैदा हुई। दशकों बाद पहली बार देश का बजट संतुलित हुआ और अपराध दर में भी काफी कमी आई।
लेकिन दूसरे कार्यकाल पर एक बड़ा साया भी रहा।
हाँ, आप मोनिका लेविंस्की कांड और उसके बाद हुए महाभियोग की बात कर रहे हैं?
जी, महाभियोग मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया।
हाँ हाँ, बिल्कुल। महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने की एक तरह की संसदीय प्रक्रिया। क्लिंटन किताब में इसे एक भयानक नैतिक भूल मानते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं।
लेकिन वो जांच पर भी सवाल उठाते हैं।
हाँ, वो ये भी कहते हैं कि केनेथ स्टार के नेतृत्व में जो जांच हुई वो एक राजनीतिक साजिश थी जिसका मकसद उन्हें निजी तौर पर बर्बाद करना था। वो इसे व्यक्तिगत विनाश की राजनीति का नाम देते हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन पर महाभियोग चलाया भी,
लेकिन सीनेट ने बरी कर दिया था।
हाँ, ऊपरी सदन यानी सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया।
तो इन तमाम उतार चढ़ाव, सफलताओं, विवादों के बाद वो अपनी विरासत को, अपनी लेगेसी को कैसे देखते हैं?
उनका मानना है कि हाँ, तीखी राजनीतिक लड़ाइयां हुई, व्यक्तिगत गलतियां भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद उनके प्रशासन अमेरिका को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुरक्षित और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार छोड़ गया। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो क्लिंटन फाउंडेशन के जरिए वैश्विक स्तर पर काम करते रहे हैं।
इन घटनाओं से उनकी जो मूल विचार हैं, उनके उसूल हैं, उनकी एक झलक तो मिलती है। एक बात जो बार बार सामने आती है वो है निजी जिंदगी और राजनीतिक जीवन का गहरा जुड़ाव।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इस किताब का कह सकते हैं केंद्रीय सूत्र है। क्लिंटन का तर्क ही यही है कि उनके राजनीतिक फैसलों को उनके निजी इतिहास, उनकी पृष्ठभूमि समझे बिना नहीं समझा जा सकता।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे वो कहते हैं कि आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे लोगों के लिए उनकी जो हमदर्दी है वो कहीं ना कहीं उनके अपने बचपन के अनुभवों से जुड़ी है। और उनकी वो कमबैक किड वाली छवि,
हाँ, हार के बाद वापसी करने वाली।
हाँ, मुश्किलों से उभर कर वापसी करने की क्षमता, ये सिर्फ उनकी निजी खासियत नहीं थी बल्कि उनकी एक राजनीतिक रणनीति भी बन गई थी।
और उनका वो तीसरा रास्ता वाला दर्शन, वो भी उनके सी व्यवहारिक रवैये का हिस्सा लगता है ना?
बिल्कुल। वो मानते थे कि पुराने वामपंथी दक्षिणपंथी खांचों में राजनीति को नहीं बांटा जा सकता। जरूरी है कि व्यवहारिक होकर नतीजों पर ध्यान दिया जाए। अवसर, जिम्मेदारी और समुदाय, ये उनके इस दर्शन के तीन स्तंभ थे। सरकार का काम सिर्फ बड़ा या छोटा होना नहीं बल्कि असरदार होना है।
उनमें सुलह की कोशिश करने की एक ललक भी दिखती है, चाहे वो निजी जिंदगी में परिवार के मुद्दे हो या राष्ट्रीय स्तर पर नस्लीय मुद्दों पर माफी मांगना।
हाँ, जैसे तुस्केगी सिफिलिस अध्ययन के लिए माफी। और विदेश नीति में भी ये नजर आता है, उत्तरी आयरलैंड, बाल्कन, मध्य पूर्व में शांति की कोशिशें, सुलह की तलाश। और साथ ही आशा और आशावाद पर उनका बहुत जोर था। वो मानते थे कि नेतृत्व और लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। वैश्विक जुड़ाव पर भी उनका गहरा विश्वास था कि अमेरिका की तरक्की और सुरक्षा बाकी दुनिया से जुड़ी है।
इसीलिए शायद नाफ्ता और WTO जैसे व्यापार समझौतों पर जोर दिया।
हाँ, वैश्विक व्यापार को बढ़ाया और मानवीय संकटों में अमेरिकी दखल का भी समर्थन किया, कूटनीति में लगे रहे।
और अंत में वो व्यक्तिगत विनाश की राजनीति के उद्देश्य की बात करते हैं। मतलब उनका मानना था कि उनके खिलाफ जो विरोध था वो सिर्फ नीतियों पर असहमति नहीं थी।
जी, उनका मानना था कि वो विरोध उससे कहीं आगे बढ़कर उन्हें निजी तौर पर तबाह करने और उनके राष्ट्रपति पद को ही अवैध ठहराने की कोशिश थी। केनेथ स्टार जांच को वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं।
ये पहलू तो आज की राजनीति में भी काफी प्रासंगिक लगता है। खैर, उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अगर तीन सबसे अहम मोड़ों की बात करें तो वो कौन से होंगे आपके नजर में?
पहला तो शायद वही 1963 का क्षण होगा, राष्ट्रपति कैनेडी से हाथ मिलाना।
हाँ, वो निर्णायक पल।
एक किशोर के लिए वो अनुभव जिंदगी की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। उसी ने सार्वजनिक सेवा का बीज बो दिया।
दूसरा कौन सा चुनेंगे?
दूसरा मेरे ख्याल से 1980 में आर्कांसिस के गवर्नर का चुनाव हारना।
हार, ये कैसे निर्णायक हुई?
देखिए, ये हार बहुत बड़ी थी, अपमानजनक थी, लेकिन इसने उन्हें जमीन से जोड़ा, विनम्र बनाया और मतदाताओं की आवाज सुनने का महत्व सिखाया। इसी ने उनकी कमबैक किड वाली पहचान गढ़ी और उनकी राजनीतिक रणनीति हमेशा के लिए बदल दी। तो एक तरह से ये हार शायद उनकी कई जीतों से ज्यादा सिखा गई।
ये दिलचस्प नजरिया है। और तीसरा शायद सबसे ज्यादा चर्चित,
हाँ तीसरा है महाभियोग संकट, मोनिका लेविंस्की कांड और उसके बाद चला पूरा महाभियोग का दौर। इसने उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच के तनाव को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। उनका राष्ट्रपति पद खतरे में पड़ गया और उन्हें अपनी सबसे बड़ी निजी गलतियों का सामना सार्वजनिक तौर पर करना पड़ा। और इसी घटना ने उनके उस दावे को भी वजन दिया कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक अभियान, एक व्यक्तिगत विनाश की राजनीति छेड़ी जा रही थी, जिसने अमेरिकी राजनीति में कड़वाहट और विभाजन को और गहरा किया।
तो इन सारे अनुभवों से, उनकी सफलताओं और असफलताओं से हम आज क्या सीख सकते हैं? कुछ मानवीय सबक जो हम सबके काम आए।
सबसे बड़ा सबक तो शायद लचीलेपन का है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। क्लिंटन की कहानी दिखाती है कि बड़ी से बड़ी निजी और पेशेवर हार से भी उबरा जा सकता है। हार को अंत मानने की बजाय सीखने और खुद को बदलने के मौके की तरह देखा जा सकता है।
ये बात तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। और
दूसरा सबक है चरित्र की जटिलता को समझना। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। महान उपलब्धियां हासिल करने वाले नेताओं में भी गंभीर मानवीय कमजोरियां हो सकती हैं। नेतृत्व का मतलब परफेक्ट होना नहीं है।
ये याद रखना जरूरी है, खासकर आज के दौर में जब हम सार्वजनिक जीवन के लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं।
बिल्कुल। तीसरा, निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर असर। किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसके मूल्य, उसकी परवरिश, यहाँ तक कि उसकी कमियां भी उसके सार्वजनिक कामों और उसकी विरासत को अनजाने में ही सही पर आकार जरूर देती हैं। इन्हें अलग करके देखना मुश्किल है।
और संवाद की कला, क्लिंटन इसमें माहिर माने जाते थे, उससे क्या सीख सकते हैं?
हाँ, वो मुश्किल से मुश्किल नीतिगत बातों को आम लोगों की भाषा में समझा सकते थे, उन्हें लोगों के जीवन से जोड़ सकते थे। प्रभावी संचार कितना जरूरी है ये उनकी कहानी से साफ पता चलता है।
और सहानुभूति,
हाँ नेतृत्व में सहानुभूति का महत्व भी झलकता है। दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझना, उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ना एक अच्छे नेता की पहचान है। और आखिर में संकट का प्रबंधन।
संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट।
जी, बेहद दबाव के क्षणों में भी काम करते रहना, संकट को फैलने से रोकना और अपना पक्ष मजबूती से रखना, ये क्षमता भी उनके जीवन में बार बार दिखाई देती है, चाहे वो राजनीतिक संकट हो या निजी।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
ठीक है, पहला एक भावनात्मक निष्कर्ष। किसी का निजी इतिहास और उसका चरित्र, उसकी ताकतें और कमजोरियां, ये सब मिलकर उसके नेतृत्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। और मुश्किल हालात से उभरने के लिए उम्मीद और लचीलापन शायद सबसे बड़े हथियार हैं। क्लिंटन की जिंदगी इसका एक बड़ा उदाहरण है।
दूसरा एक बौद्धिक निष्कर्ष।
बौद्धिक निष्कर्ष ये हो सकता है कि राजनीति में तीसरा रास्ता या व्यावहारिक मध्यमार्ग अपनाना जटिल समस्याओं को सुलझाने और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने का एक कारगर तरीका हो सकता है। ये ट्रेडिशनल विचारधाराओं की जो सीमाएं हैं उनसे आगे देखने में मदद करता है।
और तीसरा एक सार्वभौमिक निष्कर्ष जो हम सबके लिए हो।
और तीसरा एक सार्वभौमिक निष्कर्ष ये है कि असफलता, चाहे निजी हो या पेशेवर, वो जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि वो सीखने, खुद को ढालने और शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करने का एक मौका है। ये सबक क्लिंटन की कहानी से बार बार उभरता है और ये हम सबके लिए जीवन के किसी भी मोड़ पर प्रासंगिक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।